Allah bless and keep you safe. Keep you safe, may Allah bless and keep you safe.
Sometimes a person goes to extreme level of happiness, and then sometimes he goes to the extreme level of depression. These both extremes, they are known as bipolar.
If we look at how common it is, then every one individual in 100 is affected by this disorder. But most importantly, the impact of this disease, bipolar disorder, is significant on the individual and also on the family as well.
जब भी आप बहुत ज्यादा खुशी के आलम में हैं, तो ये याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा. जब आप बहुत ज्यादा गम के आलम में हैं, तो फिर इस जुमले को याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा.
You cannot enjoy the things that you used to enjoy. You feel worthless and hopeless and guilty about lots of different things. And you may become tearful.
May Allah bless and keep you safe. Keep you safe. May Allah bless and keep you safe.
और जी डॉक्टर साहब, हम आगे चलते हैं इस हवाले से. हमने डिटेल में बात की है अलामात के ताल्लुक से कि वो क्या अलामत होती हैं, और अब आ जाते हैं कि इसके जो कॉजेज हैं या जो इसके असरात मुरतब होते हैं किसी भी विक्टिम के ऊपर या पेशेंट के ऊपर. आई थिंक द पेशेंट वुड बी द राइट वर्ड, कि उसके किस किस्म के असरात उस पर मुरतब होते हैं, और उसके साथ जो केयरर्स हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से इस ऐसे शख्स से मुतासिर होते हैं जो इस बेचारा बीमारी में मुब्तला है.
फर्स्ट ऑफ ऑल, if we look at the impact of the illness on the individual who is affected by it, clearly you know, all the most of the symptoms that I've described, they will be present in that individual to some degree or another, to some extent or another. Now clearly they are not the actual diagnostic criterion for this is that these symptoms affect their daily functioning, so they will not be able to maintain their activities of daily living. They may not be able to go to work. They may not be able to go and do their job. They may not be able to continue offering their prayers, or they may not be able to function as an individual at home. So first and foremost impact on this individual is that they cannot function normally. Now someone who is actually, although we are talking about bipolar disorder, we have in the previous episode discussed depression. That's why we are not dealing with or not mentioning depression too much. We are focusing on manic episode. Now, I will obviously, when we come to the diagnosis of it, I will actually mention it in more details, that how can you actually tell, or how can you diagnose the bipolar disorder. So we are mainly focusing on the manic episode bit. This individual, the biggest problem with him is that he thinks there's nothing wrong with him.
Yes.
He feels happy. He says that, I am happy. What's the problem with other people? They are looking at me from negative point of view. They are being jealous that I'm happy.
I'm a successful person of the world.
I'm a successful person. I'm, you know, I'm flying and I'm flourishing and I'm so and so. They will not seek treatment. They will not believe that they are mentally unwell.
Right.
They will say, I am happy. There is nothing wrong with being happy. It is the other people who got problem, who are not accepting me as an happy individual. They are jealous of me. This is the first and foremost problem to the family members or other mental health professionals, that when they go into a manic episode, they refuse to engage with the treatment.
जी, मैंने चाहे कि नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे कि हम ऐसे मरीजों का इलाज करवाएं. डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात अभी ये बयान की है कि जब हम इसके असरात जो मरतब होते हैं उस पेशेंट पे और उसके गिर्द नवा में रहने वाले, उसके साथ जो बसते हैं उन लोगों पे, तो डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम इनके साथ बहुत ज्यादा ये होता है कि ये इलाज की तरफ नहीं जाते. ये तो समझते हैं कि मैं तो बड़ी खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो बड़ा कामयाब इंसान हूँ, और ये लोग मुझसे जल रहे हैं, इनको मुझसे जेलसी है, ये समझते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है. हालांकि ऐसा नहीं है, मैं तो एक खुशी के गलबे में वो ये समझते हैं कि मैं, और हालांकि होता भी है कि इनके अंदर कुछ ऐसे जज्बात आ जाते हैं कि ये शुरू में कुछ ऐसी कामयाबियां हासिल भी करते हैं, इसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन हकीकत में ये बेचारे बीमार होते हैं और इनकी इस बीमारी को लेकर इनको डॉक्टर तक लेके जाना भी एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। बट वी हैव टू टैकल विद इट, हमें इसको डील तो करना है। cause what you would like to mention here,
the impact on the family members. Now clearly someone who's not eating properly, someone who's not sleeping properly, someone who's got plenty of ideas, someone who you cannot obviously stop talking, and someone if you try to interfere they become irritable, they may become aggressive, and they are spending a lot of money, they are doing lots of alterations to the home, they might be obviously going out and about for long periods of time without actually telling you anything about it, they may be accusing you, then that individual can itself imagine that what will be the effect on the mental state of the carers, the family members, and their immediate family members or their social network and the friends. So it actually affects not just the family but their social network as well and the community as well.
तो मतलब पता ये चलता है कि आप अगर इस किस्म की बीमारी में मुबतला हैं तो ना सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासर होती है बल्कि आपके गिर्द नवा में रहने वाले लोग भी इससे मुतासर होंगे। जब आप खाना पीना छोड़ देंगे, जब आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आप समझेंगे कि मेरे जो ख्यालात हैं, मेरे जो आइडियाज हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और मैं तो जो है इसको, इस आइडिया को एक्सरसाइज कर सकता हूँ, इसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ और मैं जिंदगी में और कामयाबियां इकट्ठी कर सकता हूँ। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो इस जोर में, फासिद में और इस बीमारी की वजह से जो है जब इस सोच में पड़ जाते हैं तो जिनके पास पैसा होता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। अब इस बीमारी को लेकर अगर कोई फाइनेंशियल तौर पर बहुत बेहतर था लेकिन इस बीमारी की वजह से वो अपना माल जो है वो गलत तरीके से उसको इन्वेस्ट करेगा और उसको जाया कर देगा और ये इसकी वजह से अब उसने जो करना था तो वो कर दिया लेकिन उसके जो वारिसीन है वो कितने ज्यादा उनको प्रॉब्लम होगी, वो कितने इफेक्ट होंगे, उनके साथ बसने वाले कितने प्रॉब्लम्स में आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा एक जिसे कहने के सख्त तरीन मरहला है जिंदगी का अगर किसी को ये बीमारी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें बचाए और अल्लाह तबारक व तआला जिनको ये मसला है, बीमारी है, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजला भी अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मुसब्बिब अल असबाब है और वो बीमारियों को शिफा में बदल सकता है। ये तो आपने बड़ी मतलब यानी कि इम्पोर्टेंट बात की है कि नींद भी डिस्टर्ब हो गई, खाना पीना भी रुक गया, आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पा रहे और अपने सोच के अंदर आप जो है जो कर रहे हैं वो तो बस बहुत आप खुशी में कर रहे हैं। तो अब एक तो हो गया एक्सट्रीम लेवल पे आप अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, अपने ख्यालात को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन एक इसका जो अदर एंड है जिसमें आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपके ऊपर गम का गलबा ज्यादा आ जाता है और उस पैनिक से, उस प्रॉब्लम से आप निकल नहीं पा रहे, उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि उसके जो असरात होते हैं वो कितने?
Obviously, both of these extremes are clearly damaging, and the activities of daily living are severely affected in depression as well. You will not be able to continue to work. You will not be able to financially support your family. You will not be able to socialize with your friends. And most importantly, in either of these, there is a risk of suicide as well. These individuals may develop suicidal ideation, which in some cases they may not be able to have much control over. And then basically one can imagine that if someone ends up taking their own life, then the impact of this on the family, and especially in our culture and in Asian society, the stigma that is attached with this, that their individual committed suicide, is something that they have to live with that burden for the rest of their life.
How would you differentiate between a normal depression and bipolar disorder when you have got depression? How do you differentiate between this?
Now let's come to the how does a doctor diagnose bipolar disorder. As I said, that the individual will first have an episode of depression, and once they were resolved with the episode of depression, it has actually resolved and they're feeling normal, then sometime in their life they will actually have a what we call as a manic episode. So in different times of the year, they will have an episode of depression or an episode of mania.
Okay.
It is not that they have one episode of depression and then one episode of mania. They may have one episode of depression, two episodes of mania, but most commonly they have more depression, more depressive episodes than manic episodes.
Right.
So, diagnostic criteria or someone, for example, the common point is that sometimes we see patients who say they've got bipolar disorder. Okay. They've actually studied on Google. They've got sometimes they don't feel happy and sometimes they feel, you know, happy. Mm-hmm. And they look at the, internet. And they compare their symptoms and they go to their doctor that I've got actually bipolar disorder. They are referred to the mental health specialist, psychiatrist. And the psychiatrist takes the history. And I think this is very important for the viewers of Padni Channel. Those individuals who may feel happy and sad that in the same day or in the same week, let's say that in the same day, for the first few hours, they are happy. And then they have another, you know, something happens, and then for the next few hours, they feel sad. And this happens on a daily basis, because they are experiencing episodes of happiness and episodes of sadness in the same day. They feel they've got bipolar disorder. This is not bipolar disorder. This is just your mood variation. You have problems with emotional regulation. Something happens and you obviously become overly worried about it. And something good happens and you get overly excited. You are finding it difficult to regulate your emotions. You cannot put a handle on your emotions. This is emotional dysregulation rather than bipolar disorder. بعض دفعہ ہمیں یہ بڑا مسئلہ ڈاکٹروں کو آتا ہے, کئی مریض یہاں پہ ایسے دیکھنے پڑتے ہیں کہ جو ایک ہی دن میں صبح کے وقت اداس تھے اور بعد میں خوش ہو گئے, وہ اب یہ روز ان کو ہو رہا ہے, مطلب ایک ہی دن میں خوشی ایک ہی دن میں غمی, اور یہ سائیکل چل رہا ہے. اب یہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں تو ہاں میں تو یہ ہے وہ خوش بھی ہوں ہوتا ہوں, اداس بھی ہوتا ہوں, جب خوش ہوتا ہوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, جب اداس ہوتا ہوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بائیپولر ڈس آرڈر ہے.
ایک تو ڈاکٹر گوگل نے بڑی پرابلم کریٹ کی ہوئی ہر لحاظ سے.
جی بہت سارے مطلب اور شعبوں میں بھی اس نے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے.
جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی.
ظاہر ہے غلط استعمال ہے اس کا, ایک بندہ غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے, کیونکہ
سیلف ڈائگنوسس
تو کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ اپنے جی پی کے پاس جائیں گے, وہ اسپیشلسٹ کو ریفر کرے گا. تو اب اسپیشلسٹ جب دیکھے گا کہ بھائی یہ تو ایوری ڈے اس کو ہو رہا ہے, یہ بائیپولر ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ آپ اپنی فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ اپنی فیلنگز کو ریگولیٹ نہیں کر پا رہے. تھوڑی سی غمی کی کوئی خبر آتی ہے تو ہم بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں, اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تھوڑی سی خوشی کی خبر آتی ہے تو ہم اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو یہ جو ایک ہی دن میں خوشی کی کیفیت یا ایک ہی دن میں غمی کی کیفیت, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ in one week you have two or three days when you are happy and then you have two or three days when you are sad. So you have, rather than feeling happy and sad on every day, you have two or three days of episodes of depressive symptoms and then two or three days of episodes of manic symptoms, let's say, feeling overly happy. This is again not bipolar disorder. کہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر روزانہ طور پر نہیں, لیکن آپ کوئی کہہ سکتا ہے, بعض دفعہ مریض کہتے ہیں دو تین دن کے لیے جو ہے وہ میں تو ڈپریس موڈ میں چلا جاتا ہوں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تین چار دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں یا تو نارمل ہو جاتا ہوں یا اوورلی ہیپی ہو جاتا ہوں. یہ بھی ڈائگنوسٹیکلی جو ہے یہ بائیپولر ڈس آرڈر نہیں ہے. ڈسکشن کو سمپل رکھنے کے لیے میں نے اس پہ ڈسکلام نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا, لیکن صرف اتنا ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ایک ویک میں یا ایک دن میں آپ خوش اور اداس ہیں تو یہ بائیپولر ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ آپ کی ایموشن کنٹرول پہ آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا.
یہاں پہ یہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی اچھی نعمت ہے اگر ہم اسے یوں دیکھیں, کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارا فارمیشن کی ہے, ہمارا ہمیں تخلیق کیا ہے اور اس خوبصورت اور پرفیکٹ انداز میں کیا ہے اس خالق نے, کہ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کسی غم کی کیفیت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے. الحمدللہ بڑے بڑے ایسے حادثات زندگی میں ہوتے ہیں, کسی کی والدہ فوت ہو جائے, किसी के वालिद दुनिया से चला जाए, किसी की जिंदगी भर का साथी दुनिया से चला जाए, और वो तो शुरू के जो औकात होंगे, जो शुरू का जो वक्त होगा तो इतना ज्यादा होगा कि कुछ लोग तो ये समझेंगे बस मेरी दुनिया ही खत्म हो गई, मेरी दुनिया ही चली गई। अगर उनको पहले दिन की कैफियत आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे होगी कि बस वो समझेंगे कि दैट्स द एंड ऑफ माई लाइफ। लेकिन जैसे जैसे वो पहला दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन गुजरता है, और इस्लाम में भी जो शोक का कॉन्सेप्ट है वो यही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक ही ऐसे किया है, हम तीन चार दिन के बाद हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। और ये भी देखें, अगर इसको डिफरेंट अंदाज में देखें तो अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, अगर हम उसी प्रॉब्लम में रहते तो हमारी तो जिंदगी रुक सी जाती है, हम तो फिर आगे बढ़ ना पाते। हमारे साथ जो जिंदगी के और मामला थे, जो और हमारी जिम्मेदारियां थी, हम उसको बेहतर अंदाज से न कर पाते। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमारे दरमियान उस गम का इतना गलबा रहता नहीं है। लेकिन ये तो उनके लिए कि जिन्हें अल्लाह ने सेहत की, तंदुरुस्ती की जिंदगी अता कर रखी है। इसी तरीके से जो लोग जो है अपना सेल्फ डायग्नोसिस शुरू कर देते हैं, वो यूं भी समझे कि बसा औकात एक डॉक्टर बड़ा एक क्वेश्चन अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार काजी दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में भी मदनी मुजाकरे का जो हमारा सिलसिला होता है मदनी चैनल पे एवरी सैटरडे को, और मैं रेकमेंड करूंगा कि व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सिलसिला है जिसमें आपको तिबी हवाले से भी मशवरे मिलते हैं,
मेंटल हेल्थ के हवाले से बड़े जबरदस्त और बेहतरीन मदनी फूल जो है अमीर अहले सुन्नत देते हैं। इस हवाले से पर्सनली मेरे, यानी कि अगर एज अ डॉक्टर इन साइकाट्री देखा जाए तो मैं बहुत कुछ अमीर अहले सुन्नत के ये जो नफसियाती तौर पर मदनी फूल होते हैं बहुत कुछ मैं खुद सीखता हूँ।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्यारे मोहतरम इस्लाम, यही मैं अर्ज कर रहा था कि जो अमीर अहले सुन्नत से ये क्वेश्चन मदनी मुजाकरे में मैंने सुना है, लोग पूछते हैं कि या सैयदी होता यह है कि हम जब आपकी बारगाह में आते हैं या हम मदनी माहौल के करीब रहते हैं तो हमारी ईमान की कैफियत जरा डिफरेंट रहती है, और जब हम फिर दुनिया में चले जाते हैं तो फिर हमारी जो कैफियत है वो ईमान की कैफियत जो है वो डिफरेंट हो जाती है और फिर हम दुनिया में मुनहमिक हो जाते हैं। तो उन अमीर अहले सुन्नत का जो फरमान का मजमून है जो मुझे याद पड़ता है वो यही है कि इंसान की कैफियत और जो कल्ब की कैफियत है ये बदलती रहती है, इंसान एक ही कैफियत में हमेशा नहीं रहता। कुछ देर के लिए गम का गलबा हो जाना या कुछ देर के लिए खुशी का गलबा हो जाना, इसको लेकर आप ये कभी ना सोचें कि आपको जो है वो डिसऑर्डर है। लेकिन अगर इसमें कुछ प्रोलॉन्ग कैफियत हो जाती है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा जैसे एक्सट्रीम लेवल पे जाता है और समझते हैं कि हाँ वाकई मुझे डायग्नोसिस करवाना है, तो खुद अपना डायग्नोसिस ना करें बल्कि डॉक्टर को आप जो है एडवाइस उधर से सीख करें, वहां से हेल्प लें, और फिर ही आप जी डॉक्टर इस हवाले से आप क्या कहेंगे।
तो अब अगर किस का हम डायग्नोज करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर, कौन सा मरीज होता है, आप देखें कि जब किसी को डिप्रेशन हुआ
जी,
तो अब कम से कम जो डिप्रेशन की उस पर कैफियत रहेगी कोई चार हफ्ते से लेकर छह महीने के दौरान, ये इतना अरसा उसकी कैफियत रहेगी डिप्रेशन की।
ठीक है, ये नहीं कि एक आध दिन के अंदर ही,
एक दिन अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर ना, चार हफ्ते से लेकर एक महीने से लेकर छह महीने तक कुछ भी अरसा, दो तीन महीने जो है ये जो है वो डिप्रेशन का वो एक ही एपिसोड चलेगी, एक ही एपिसोड, वो जब तक फुली रिजोल्व, सिंपल अगेन मैं कह रहा हूं, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है लेकिन हम एक यानी कि मदनी चैनल के नाजरीन के लिए डिस्कशन को आसान रखने के लिए, सिंपल करने के लिए, तो अमूमन यही होगा कि पहले डिप्रेशन की एपिसोड होगी, वो चार हफ्ते से लेकर छह महीने तक जो है वो जारी रहेगी एक ही एपिसोड, फिर आप रिकवर करना शुरू करेंगे, अप टू सिक्स मंथ्स लगेंगे। रिकवरी के बाद आपका कुछ पीरियड आएगा मिनिमम दो से चार हफ्ते जिसमें आप नॉर्मल कैफियत में होंगे। अब उसके बाद, अब ये दो से चार हफ्ते है, छह महीने है, साल है, अब उसके बाद फिर आपको मैनिक एपिसोड होगी, और मैनिक एपिसोड जब होगी तो वो भी मिनिमम वीक टू 2 वीक्स इसका ड्यूरेशन होना चाहिए, और जाहिर है कि फिर ये आगे हफ्ते और महीने तक भी जा सकती है। तो यूं जो है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मरीज खुद आके कहता है मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो एज अ डॉक्टर नॉर्मली मैं कह सकता हूं कि आपको नहीं है भाई बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों भाई, जो हैप्पी होगा जिसको मैनिक एपिसोड होगी वो तो कहेगा कि मुझे तो मसला ही नहीं है। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द हु व्हिच वन ऑफ दोज पेशेंट्स हु कम टू अस दे एक्चुअली हैव बाइपोलर डिसऑर्डर, इफ दे सफर फ्रॉम अ डिप्रेसिव एपिसोड, दिस डजंट लास्ट फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज इन अ वीक, it will last for at least minimum 4 to 6 weeks, and it may continue up to 6 months or more. Sometimes you may feel a little bit better, but still low.
Okay.
Not happy. So persistently low mood, not enjoying things, not eating and sleeping properly, and not social interaction, and feelings of worthlessness, and low self-esteem and so forth, for at least 4 to 6 weeks. Then this may continue up to 3, 4, 5, 6 months. Then the depressive episode resolves. I'm keeping it fairly simple for the understanding of the viewers of Madhini Channel. Then you will have a normal period. This may be at least 2 weeks minimum, 2 to 4 weeks. You will have a period of normal life, happy life, normal life. Then you may experience, whether this is after 6 months or after 4 weeks of episode of depression, you will then experience a manic episode. And this manic episode, generally speaking, minimally have to last at least a week.
Okay.
A week to 2 weeks, and then obviously it can last longer than this in most cases. Few months is common in individuals. So you will have an episode of depression lasting for few months, then a period of normal life,
okay,
normal mood, and then you obviously go to the other extreme for few weeks to few months. When someone presents with these symptoms and they are so severe that they cannot maintain their normal functioning.
No.
Someone who is going to work, someone who is able to do other sort of voluntary activities in their life, and they are coming and saying their mood is up and down, this is emotional dysregulation. You are able to sleep and eat and drink and wash and dress yourself, look after your family members. This is not bipolar disorder. In bipolar disorder, you, let alone that you can't look after others, you yourself cannot look after yourself.
Mm-hmm.
You may not pay any particular attention to your hygiene. So your hygiene will be poor and so forth. So these are what we call as diagnostic criterion for bipolar disorder.
Dr. Sahib, mashallah, aapne bahut khoobsurat andaaz mein isko explain karne ki sahi ki hai. Ab aa jate hain ki is sawal ki taraf ke jo ye jo patients hote hain, ye bichare jo illness ka shikar hain, तो इनके दिमागी तौर के ऊपर हमें साइंस क्या बताती है कि क्या इशू क्या होता है, इनके दिमागी तौर के अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि ये बहुत ज्यादा खुशी के गलबे में चले जाते हैं और समटाइम दे गो टू डिप्रेशन एपिसोड्स, समटाइम दे गो इनटू द एपिसोड वेयर दे आर अनयूजुअली हैप्पी, एंड व्हाट डज साइंस टेल अबाउट दिस.
अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना साइकाइट्री जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब लोगों में नेगेटिव परसेप्शन पाई जाती है, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स में भी. अगर मैं कहूँ कि दीगर जो मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर हैं स्पेशलिटीज के, वो भी साइकाइट्री को प्रॉपर साइंस नहीं तसव्वुर करते.
अच्छा.
मतलब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना. तो अगर आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर केमिकल लेवल पे साइंटिफिक लेवल पे देखा जाए, हमारा ब्रेन जो है ना, ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं केमिकल मैसेंजर्स के जरिए. मिसाल के तौर पर एक लेते हैं कि हम जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हजारों मील दूर बैठे बंदे को हम अपना पैगाम बड़े जल्दी से किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पहुंचा सकते हैं. तो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सोशल नेटवर्क. अच्छा, अब जिस तरह ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं. इसी तरह हमारे
ब्रेन के अंदर सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं हमारी, हमें एक इंसान बनाने के लिए. सो ये इंटरेक्शन होता है, ये कम्युनिकेशन होती है केमिकल्स के जरिए. अब इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स. मिसाल के तौर पर नोर एड्रेनलिन, इसी तरह सेरोटोनिन. ओके, अच्छा मैं इनसे दो का नाम लूंगा, और भी बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. अब डिप्रेशन में क्या होता है कि दिमाग के अंदर सेरोटोनिन लेवल्स लो हो जाते हैं. तो आप क्या है कि जो दिमाग के अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए तो वो नहीं होती, या फिर आप फिर जाहिर है कि उसकी वजह से सोच भी सही तरह से नहीं पाते, खा भी सही तरह से नहीं पाते, नींद भी नहीं आएगी वगैरह वगैरह, और तरह की मन की सोचें आना शुरू हो जाएगी. क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको हम यानी सेरोटोनिन बोलते हैं, उसका लेवल लो है.
सही.
अब उसकी अगर आप मेडिकेशन के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो दवाई होती है वो क्या करती है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है इसके लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अब इसी तरह जो मेनिया है मैनिक एपिसोड है इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है नोरएड्रेनालिन जो हमें खुशी की कैफियत देता है इसके लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब आपने इसको ट्रीट करना है इसको रिड्यूस करना है। So in a nutshell, what I was actually mentioning is that generally speaking, people, whether they are public or medical professionals who are not psychiatrists and they belong to other specialties, they have a generally misconception that psychiatry is not really a science. It's an outdated, you know, mode of treatment. Actually, there is a lot of science behind psychiatry. And I would say that before I actually came into the field of psychiatry, probably this was what my perception was as well. So, if we talk about the human brain, how it functions, for example, the cells in the brain, they communicate with each other to send signals for us either to say something or see something or do something. This interaction takes place through chemicals.
Right.
And in the brain, these chemicals are called neurotransmitters. So, two chemicals, two neurotransmitters, obviously there are many more neurotransmitters, but we mentioned two. One is noradrenaline, one is serotonin.
Okay.
When someone gets depressed, the neurotransmitter which is involved is serotonin.
Yeah.
Its levels actually get low. The cells cannot communicate effectively, and then this leads to presentation in terms of low mood, low self-confidence, lack of positive thoughts, and social withdrawal.
Okay.
And how you treat that with medication is, simply one way or another, you try to increase the serotonin level.
Mm-hmm.
Now, if we talk about mania, then the neurotransmitter that is involved in mania is noradrenaline. This is the neurotransmitter which is, you know, similar to adrenaline. It gives you that rush.
Mm-hmm.
So, how you treat with mania is that you will try to bring those levels down. This is the science behind bipolar disorder. This is the chemistry behind bipolar disorder. So, I think it is also a strong message to the viewers of our new channel that, you know, these are medical problems, these are mental health problems. You know, your chemicals in your brain are affected and we need to actually seek treatment from a doctor to actually help us cover or overcome these problems.
MashaAllah. Now, time is just about to finish. Let's come towards the solution. What help is available and what treatment is available? Is it curable or not? And how can the carers or the family can convince the patient to take him to the doctor, as we have earlier said, that it's very hard for them to admit the fact that they are ill.
First of all, when it comes to treatment, we'll have to address the acute illness to begin with.
Mm-hmm.
An episode of depression or an episode of mania.
Okay.
So, first of all, they may need treatment with the help of a doctor. They may need medication. Okay, so obviously each case will be different, so I cannot actually further expand on that. But obviously it is very important that when you are feeling depressed, when you are feeling manic, you go and see your doctor
and discuss.
Sometimes, as we mentioned in depression, it could be other causes, like problem with thyroid, problem with anemia, or some other vitamin deficiencies. So your GP has to actually do some blood test to make sure that those problems are not there. So this is one of the reasons that you must also seek the advice of the doctor, that they may rule out other physical health causes, because they can present in the form of these psychiatric symptoms.
Okay.
Secondly, if they think, okay, there's no physical cause and you've got depression or you've got mania, then the doctor will actually advise you accordingly from medication point of view, whether you need the medication or not. So you will acutely address, you will manage the risks as well. So whether it is a risk of driving, whether it is a risk of suicide, because one thing that is very common in people with mania, when they are beginning to actually get better from the manic episode, there comes a time when they realize they were not well.
Mm.
And this insight into their illness makes these individuals that I was really ill and I did not actually know that I was ill.
Mm-hmm.
And then it will hit them, the money they have spent, the damage they have done.
Yeah.
And they may feel a big guilt factor, and because of this guilt, they are at high risk at this point when they are recovering. People may think they are recovering and they are getting better, but deep in their mind, they are now looking at how damaging they have been, how much damage they have caused, and because of this guilt factor, they may actually commit suicide. So we have to be very careful in terms of risk management as well. Risk of driving, risk of suicide or self-harm, risk to others, and also, so then we talk about, you know, the person has actually recovered from an acute illness. Now I think the much more important task is how we manage this in-between time period. And I think one of the common causes of depression or mania is that there is a stressful event in the life. And the person cannot deal with that stress. So if one were to actually educate themselves, how can they deal better with stressful situations, and they can make themselves mentally stronger, then it is natural conclusion to say that when they will face stressful events, they will be much better at dealing with them.
Mm-hmm.
And I think, I mean, again, I will echo the same words. That we have to have is, you know, knowledge about teaching of Islam, about excellence of suffering, and you know, it is not just this world. We have another, you know, life
everlasting
hereafter, which is everlasting. These are trials and tribulations, and these are tests and so forth. And I think, I mean, once we actually develop these positive thoughts, that if you know, a problem afflicts me, then I've got a family unit who can actually help and support me. I've got a social network in terms of peace, Muslim, Dawat Islami, or Madhya Kafilas, and I can gain some sort of peace and tranquility in
there.
Then that will actually maintain that even episode.
مدنی چینل کے ناظرین ہم سولوشن کی طرف آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ رسکی بیماری ہے, اس میں جو ہے متاثرہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی زندگی کے دیگر افراد جو اس کے ساتھ بس رہے ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو پیارا محترم اسلامی, ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے, اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مریض ہے اس کو ٹرائی کریں, اس کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. یا کوئی ایسا مریض ہمیں سن رہا ہے جو کہ کبھی بہت زیادہ خوشی کے غلبے میں رہتا ہے یا بہت زیادہ غم کے ایپیسوڈز میں چلا جاتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس ایڈمٹ نہ کرے افیکٹ کو کہ میں بیمار ہوں, ایک مرتبہ معالج کو دکھانے میں کیا حرج ہے, آپ ضرور جائیے, اپنی زندگی کا بھی تحفظ کیجئے, اور اپنے گرد نواح کے بسنے والوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے جو ہے ان کی زندگی کے تحفظ کا بھی باعث بنے, اور ڈاکٹر کو ضرور ہیلپ سیک کریں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہوگا, آپ خود فیل کریں گے, یار میں بیمار تھا, میں اس پریشانی میں مبتلا تھا, اس بیماری میں مبتلا تھا, اور میں نے کتنا ڈیمیج کریٹ کر دیا ہے, اور اپنی زندگی کے ساتھ بھی, فائنینشیل طور کے اندر بھی, اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی, اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی, میں نے کتنا زیادہ نقصانات کر دیے. تو اس سے پہلے کہ انسان بعد میں پریشانی کو جو ہے وہ سمجھے, اس کو پہلے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے, اور ڈاکٹر کے پاس اس کی ایڈوائس اویلیبل ہے. کیونکہ یہ بیماری ہے, اس کی کیور موجود ہے, میڈیکیشن موجود ہے, ڈفرینٹ تھراپیز موجود ہیں, اور وہ جو بھی سائیکیٹرسٹ ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے, اسپیشلسٹ ہوں گے, اس فن کے ماہر ہوں گے, وہ آپ کی ہیلپ کریں گے, اور انشاءاللہ آپ اس بیماری سے نکل آئیں گے اور ایک اچھے شہری کی طرح زندگی بسر کر سکیں گے. اور بہت ہی خوبصورت بات جو ڈاکٹر صاحب نے پھر سے وہ یہ کی ہے کہ آپ ایک اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے کی کوشش کیجیے, کہ جب آپ کے اندر اسلامی تعلیمات اجاگر ہوں گی تو پھر آپ کے اندر صبر کا ایک مادہ اور بڑھے گا, آپ شکر کریں گے, صبر کریں گے, اور آپ اعتدال کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ ڈپریشن بیماری کا بھی شکار ہیں تو آپ سیکھ سکیں گے کہ میں کس طریقے سے کسی بھی جو ہے وہ سٹریسفل ایونٹ سے ڈیل کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے اویلیبل ہے الحمدللہ پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا, آپ مدنی قافلوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں, آپ الحمدللہ اجتماعات میں بھی آ سکتے ہیں, مدنی چینل بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن ان تمام تھراپیز کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اپنا علاج کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور ہمیں صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے. جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل کی واچنگ، مدنی چینل کی ریسائٹنگ صلوات اپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام. انٹل نیکسٹ ٹائم ویل کم بیک ود انادر انٹرسٹنگ ٹاپک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
May Allah bless and keep you safe, may Allah bless and keep you safe.